ओम नमस्ते जी। 306 श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर लेखक श्री आदित्य मुनि जीवान प्रस्थ। हम द्वितीय परिशिष्ट को जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म पत्रिका फलादेश आपको सुना रहे हैं। एक फलित ज्योतिष के जानकार आर्य ज्योतिषी ने इस ग्रंथ के आरंभ में प्रकाशित स्वामी दयानंद की जन्म कुंडली का अध्ययन करके हमें बताया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मतिथि सोम मंगलवार 20 सितंबर 1825 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जन्म प्रातः 3:30 के लिए सायन कुंडली के अनुसार सिंह लग्न और लग्न में मंगल एवं शुक्र, कन्या राशि में बृहस्पति, सूर्य तथा बुध, धनु राशि में चंद्रमा और मिथुन राशि में शनि एवं केतु, मेष, वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। यह महान शिक्षक, धर्म मार्ग प्रदर्शक, उदार हृदय और बलिष्ठ एवं आकर्षक पुरुष का जन्म चक्र है। कोदंड राहु होने से गुरु को राहु का दोष नहीं पहुंचा रहा है। अष्टम भाव राहु, शनि और भौम के संयुक्त प्रभाव में होने के कारण मध्यायु सिद्ध होती है। कुंडली के अति विशिष्ट योग इस प्रकार हैं: पहला, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी योग कारक मंगल लग्न में दशमेश शुक्र के साथ है। दूसरा, यही योग एकत्रित मंगल और शुक्र दशमेश, केंद्रेश और नवमेश त्रिकोणेश की युति होने का भी है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग है और स्वामी दयानंद को यह प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तीसरा, एक भी ग्रह बृहस्पति ग्रह के साथ अशुभ षडाष्टक नहीं है। बृहस्पति पूरी तौर पर षड बल से सबल है। चौथा, प्रबल धनात्मक यानी धनेश और एकादशेश और वाणी और वाक कौशल का विशेष बुध सबल और स्वगृही है। पांचवा, शनि एवं केतु की तृतीय भवन में स्थिति, खासकर जबकि शनि चंद्र लग्नेश भी हैं। और अंतिम छठा, कार्मिक नियंत्रण के ग्रह बृहस्पति और बुध एक साथ हैं, यानी पारस्परिक केंद्रीय स्थिति में हैं। तीनों लग्नेशों के रूप में बुध, बृहस्पति और शनि की परस्पर संबद्धता में होना सोने में सुगंध का काम कर रहा है। इस प्रकार उक्त सभी 6 बिंदुओं के अंतर्गत यह जन्मांक बहुत ही विशिष्ट, अत्यधिक विरल और एक बहुत बड़े युग पुरुष का सिद्ध करता है। उन्हीं ज्योतिषी महोदय ने मुझे लिखा है कि कंटके नैव कंटकम। हमारा फलित ज्योतिष में निजी तौर पर कोई विश्वास नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि हम फलित की आकलन विधा को जानते ही नहीं है। हमारे सामने महर्षि की गलत जन्मतिथि 12 फरवरी 1825 ईस्वी के समर्थन में फलित ज्योतिषीय तर्क रखे गए थे, अतः हमारे लिए यह आवश्यक हो गया था कि हम फलित ज्योतिष के तर्कों का फलित ज्योतिष के तर्कों से ही उत्तर दें। उक्त फलादेशकर्ता का कथन। अब हम आपको तृतीय परिशिष्ट, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की अज्ञात जीवनी यानी कलकत्ता कथ्य की पृष्ठभूमि शीर्षक है, उसका स्वाध्याय करा रहे हैं। सन 1923 में आर्य समाज कलकत्ता के दीपावली उत्सव के सभापति पद से भाषण देते हुए श्री बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के नेता हैं रहे हैं, सुप्रसिद्ध राजनीतिक वक्ता हुए हैं और ब्राह्म समाज के विशिष्ट पुरुष भी थे, इन्होंने घोषणा की थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती वर्तमान युग के अनन्य श्रेष्ठ महापुरुष थे। बहुत ही खेद की बात है कि उनकी अज्ञात जीवनी का उद्धार आज तक भी नहीं हुआ है। यह उत्तरदायित्व विशेष रूप से आर्य समाज का है, इसके लिए भगीरथ प्रयत्न होना चाहिए। श्री रामानंद चटर्जी MA मॉडर्न रिव्यू एवं प्रवासी पत्रों के संपादक और साधारण ब्रह्म समाज के आचार्य ने कहा था कि महर्षि दयानंद बंगाल में आकर पूरे 4 महीने 16 दिसंबर 1872 से 16 अप्रैल 1873 तक रहे। काशी शास्त्रार्थ 1869 के विजयी वीर महर्षि दयानंद के दर्शन के लिए बंगाल के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक, धर्म संस्कारक, साहित्यिक, कवि, दार्शनिक वैज्ञानिक और चिंतनशील मनीषी लोग उनके रहने के स्थान महाराजा यतीन्द्र मोहन ठाकुर के वराह नगरस्थ नाईवान नामक प्रमोद कानन में प्रतिदिन अधिक संख्या में आते जाते थे। विशिष्ट पुरुषों से उनका विचार विनिमय, वार्तालाप, आलोचना और शंका समाधान भी होता था। बहुतों के साथ उनका प्रेम, प्रीति और सौहार्द भी पैदा हो गया था। उनकी मुख निश्रित और संस्कृत भाषा में कथित वाणियों को लिपिबद्ध करने के लिए महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ब्रह्मानंद श्री केशव चंद्र सेन ने कुछ एक विद्वान लेखकों की नियुक्ति की थी। संस्कृत में लिखित वे सब विवरण आज कहाँ हैं? दयानंद चरित के लेखक श्री देवेंद्रनाथ मुखर्जी को इनका पता नहीं चला था। आज अगर वह अमूल्य संपद मिल जाए तो धर्म जगत के लिए बहुत ही उपकार होगा। आर्य समाज कलकत्ता का इनके उद्धार के लिए पूर्ण प्रयत्न परम कर्तव्य है। पंडित श्री रसिक मोहन विद्याभूषण, वैष्णव दार्शनिक और शताधिक वर्ष जीवी पुरुष ने कहा, उस समय तक महर्षि दयानंद ने अपने जीवन के करीब 50 वर्षों की प्रधान प्रधान घटनाओं को सुनाया था, केवल पिता का नाम और जन्म स्थान का परिचय नहीं बताया। शर्त भी थी कि उनकी मृत्यु से पूर्व यह विवरण मुद्रित न होने पावे। संभवतः वह विवरण ब्राह्म समाज के नेताओं के पास ही रह गए और उन पर उनका ध्यान ही नहीं रहा। पंडित श्यामलाल जी गोस्वामी, बंगाल के सुप्रसिद्ध धर्म वक्ता ने कहा, उस समय से 10 वर्ष बाद महर्षि दयानंद की मृत्यु हुई थी। इन 10 वर्षों के अंदर ब्रह्म समाजी आदि, नवविधान और साधारण, इन तीन नामों में विभक्त होकर परस्पर प्रतियोगिता करते रहे और महर्षि दयानंद जब राजकोट, मुंबई, पुणे, लाहौर, अहमदाबाद आदि स्थानों में आर्य समाज की स्थापना करने लगे, तब वहां के प्रार्थना समाजों यानी ब्रह्म समाज के साथ आर्य समाजों की प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई थी। इस स्थिति में महर्षि दयानंद जी की मृत्यु 1883 में हो गई। उस लिपिबद्ध विवरण के प्रति ब्राह्म समाज स्वाभाविक रूप से ही उदासीन हो गया था। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दर्शन पत्र के संपादक, श्री नगेंद्रनाथ चटर्जी, महात्मा दयानंदेर संक्षिप्त जीवनी के लेखक और श्री देवेंद्रनाथ मुखर्जी, दयानंद चरित्र के लेखक, को भी उस लिखित विवरण का पता नहीं मिला था। आर्य समाज और ब्राह्म समाज के अंदर वैमनस्य भी इसके लिए एक कारण था। सन 1873 से आज 1923 है, यह तो 50 वर्ष की बातें हैं। महर्षि दयानंद की मृत्यु 1883 के बाद भी आज 40 वर्ष चले गए। वह लिखित विवरण मिल जाए तो अच्छा ही है, लेकिन भगवान ही जानता है उसका उद्धार कैसे होगा। पंडित शंकर नाथ भवानीपुर कलकत्ता ब्राह्म समाज के सभापति और कलकत्ता हाईकोर्ट के विचारपति पंडित शंभुनाथ के सुपुत्र और आर्य समाज कलकत्ता के सभापति ने कहा, आजकल ब्राह्म समाज और आर्य समाज के अंदर कोई वैमनस्य नहीं है। बहुत पहले महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आदि ब्राह्म समाज और आर्य समाज को एकत्र करने के लिए कोशिश भी की थी। श्री वलयेन्द्रनाथ ठाकुर को इन्होंने इस उद्देश्य से लाहौर आर्य समाज तक भेजा था। उनके प्रबल आग्रह से हमने आर्य समाज के पंडित अच्युत मिश्र को बोलपुर के शांति निकेतन में दैनिक होम करने के लिए भेजा था। जब तक देवेंद्रनाथ ठाकुर जीवित रहे तब तक वहां दैनिक होम चालू रहा। पंजाब के विशिष्ट आर्य समाजी श्री राम भजदत्त चौधरी के साथ महर्षि देवेंद्रनाथ की दौहित्री श्रीमती सरला देवी का विवाह हुआ था और उस विवाह का अनुष्ठान मेरे घर पर ही हुआ था। आजकल आर्य समाज और ब्राह्म समाज के अंदर सामाजिक और व्यवहारिक वैमनस्य कुछ भी नहीं है। दोनों समाजों के विशिष्ट सदस्य लोग परस्पर दोनों के वार्षिक उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। महर्षि दयानंद की अज्ञात जीवनी के उपादान जिनके हाथों में हो वे अवश्य देने की कृपा करें। वर्तमान लेखक ने कहा, दोनों समाजों में वेद की मान्यता के संबंध में वैषम्य अवश्य है। ब्राह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय वेद को अभ्रांत और अपौरुषेय नहीं मानते थे। आज भी आर्य समाज के उत्सवकालीन यज्ञों में आदि ब्रह्म समाज के आचार्य पंडित श्री सुरेश चंद्र सांख्य वेदांत तीर्थ, नवविधान ब्रह्म समाज के आचार्य श्री द्विजदास दत्त, जो कि अध्यक्ष शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और अलीपुर षड्यंत्र मामले में आसामी श्री उल्लास कर दत्त के पिता हैं, और साधारण ब्रह्म समाज के आचार्य श्री अनाथ कृष्णशील सम्मिलित होते हैं। मैं भी ब्राह्म समाज के आमंत्रण अनुसार चितपुर रोड के आदि ब्राह्म समाज की बेहाला की और उल्टा डांगा साधारण ब्राह्म समाज की वेदी से शास्त्र पाठ करता हूँ। अगर ब्राह्म समाज वेद को अपौरुषेय और अभ्रांत मान लेता तो महर्षि दयानंद कभी आर्य समाज नाम से कोई नई धर्म संस्था स्थापित नहीं करते। जो कुछ हो, अगर महर्षि की कथित आत्मजीवनी, वार्तालाप, शंका समाधान और आलोचना प्रसंगों की पांडुलिपि मेनुस्क्रिप्ट विनष्ट न हो गई हो तो उसका पुनरुद्धार हम लोग जरूर करेंगे। उस सभा में थियोसोफिस्ट नेता श्री हीरेंद्रनाथ दत्त वेदांत रत्न एमए पीएचआरएच धर्मवक्ता पंडित कुलदा प्रसाद मल्लिक आदि वक्ताओं ने अपने अपने व्याख्यानों में हर्ष प्रकट किया था। आर्य समाज कलकत्ता के विशिष्ट पुरुष श्रीमान सेठ दीपचंद जी पोद्दार, श्री हरगोविंद गुप्त, सेठ श्री छाजूराम जी चौधरी, श्री तुलसीदास जी दत्त और श्री वलाई चंद्र जी मलिक, प्रथम भारतीय डिप्टी मैजिस्ट्रेट श्री रसिक कृष्ण मल्लिक के पुत्र और हिंदू पैट्रियट पत्र के संपादक श्री कृष्णदास पाल के भांजे आदि व्यक्तियों ने इस जीवनी उद्धार कार्य के लिए योजना भी बनाई थी। कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी पत्र के संपादक, बंग भंग आंदोलन के नेता और योगीराज अरविंद घोष के मौसे ने कहा, महर्षि दयानंद की अज्ञात जीवनी का उद्धार तो हो जाए तो मैं अपने पत्र संजीवनी में उसको धारावाहिक प्रकाशित करूंगा। वर्तमान लेखक तब सन 1923 से ही अब तक 45 वर्ष से इस कार्य में लगा हुआ है। आशाजनक फल भी मिलने लगे। इसके दो वर्ष बाद सन 1925 में मथुरा की श्रीमद दयानंद जन्म शताब्दी के अवसर पर आर्य नेताओं ने इस अज्ञात जीवनी के बारे में मुझसे विचार विमर्श किया था। तब सभी ने उत्साह प्रकट किया था। सन 1926 में टंकारा में श्रीमद दयानंद शताब्दी उत्सव में भी मैंने आए हुए आर्य नेताओं को इस अनुसंधान कार्य की संभाव्य सफलता के बारे में सूचना दी थी, जिनसे अपूर्व प्रोत्साहन मिला था। सन 1933 में अजमेर में श्रीमद दयानंद निर्वाण अर्ध शताब्दी उत्सव के चौथे दिन खुले पंडाल में महर्षि की अज्ञात जीवनी के अनुसंधान कार्यों की सफलता के बारे में मैंने भाषण दिया था। प्रोफेसर इंद्रजी विद्यावाचस्पति ने अपने आर्य समाज का इतिहास नामक ग्रंथ में उस व्याख्यान के बारे में उल्लेख किया है। महर्षि दयानंद के भक्त श्री हेमचंद्र चक्रवर्ती आदि ब्राह्म समाज के उपाचार्य की दिन पंजी से महर्षि के बंगाल में चार महीने की दैनंदिन कर्म सूची दयानंद प्रसंग नाम से मिल गई थी। आर्य समाज कलकत्ता ने महाशय श्री रघुनंदन लाल जी की प्रेरणा पर उस कर्म सूची को दयानंद प्रसंग नाम से ही प्रकाशित किया था। पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने दयानंद प्रसंग का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया था। प्रोफेसर इंद्रजी विद्यावाचस्पति ने अपने आर्य समाज का इतिहास ग्रंथ में दयानंद प्रसंग का उल्लेख करके हर्ष प्रकट किया था। पंडित भगवत दत्त जी बीए, पंडित घासीराम जी एडवोकेट और दीवान हरविलास जी शारदा से और कलकत्ता के महाशय रघुनंदन लाल जी और पंडित मिहिर चंद जी धीमान से बहुत ही उत्साह मिला है। आज की इस चर्चा को थोड़ी लंबी हो गई है, यहीं विराम देते हैं। ओम।